जैसा कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है, इस्लामी चिंतन में इतिहास के स्वरूप, उद्देश्य तथा कार्यविधि पर विचार को स्वयं इस्लाम के प्रारंभ तक ले जाया जा सकता है। वे स्वयं कुरान में प्राप्त हैं तथा इन्हें स्वयं पैगंबर मोहम्मद के वास्तविक अभिकथनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है कि ये विचार समान स्वरूप के हैं तथा इनका प्रमुख विचार ईश्वर विषय विचार प्रमुख विचार इस विषय ईश्वर का मानव इतिहास के साथ संबंध है। अतीतकालिक घटनाओं तथा दृष्टांतों की स्मृति के माध्यम से वे इतिहास के धार्मिक, नैतिक एवं व्यवहारिक उपयोगों पर प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं। इस दृष्टिकोण से मुस्लिम समाज से यह आग्रह किया गया कि वे पार्थिव जगत की संकटास्पद स्थितियों पर राज्यों के उद्भव, विकास तथा पतन पर विचार करें एवं प्राचीन समाजों के भाग्य एवं अभाग्य में ईश्वर के निर्णय के प्रकाश को समझने की चेष्टा करें। जहाँ तक ऐतिहासिक कार्यविधि का प्रश्न है, यथा तथ्य निरूपण एवं सत्यता की आपेक्षिकता पर बल दिया गया है एवं ऐतिहासिक संरचना के संप्रसारण में यथासंभव प्रारंभिक साक्षियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों को आधार बनाने का आग्रह किया गया है। इस्लाम की स्थापना होने के पश्चात इसका प्रसार भी बड़ी शीघ्रता के साथ हुआ एवं ऐतिहासिक साहित्य का उत्पादन भी एक बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुआ। कुरान तथा हदीथ में जो ऐतिहासिक बीज पहले से ही विद्यमान था, उसके विकास के लिए अब एक उपयुक्त वातावरण भी प्राप्त हुआ। एक पेशे के रूप में इतिहास का इस्लाम में प्रारंभ विशिष्ट घटनाओं के विषय में प्रामाणिक विवरणों, अखबारों की खोज, उनके संग्रह तथा संप्रेषण की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप होता दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में ये विवरण मौखिक रूप में संप्रेषित होते रहते थे एवं जब बाद में धीरे धीरे इनका लेखन प्रारंभ हुआ, तब प्रारंभ में इन्हें केवल स्मृति के सहायक उपादान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। इन विवरणों के देते समय इतिहासकार प्रमाण स्वरूप प्रयुक्त साक्ष्यों तथा व्यक्तियों की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता पर भी विचार करने का कष्ट उठाता था। वह प्रत्येक विवरण के पूर्व उन प्रमाण पुरुषों की श्रृंखला प्रदान करता था जिसके द्वारा उसे वह विवरण विशेष प्राप्त हुआ था, और यदि उसे यह विवरण विविध स्रोतों से प्राप्त होता रहता था तो वह उन सब का उल्लेख करता था। इस कार्य के संपादन में वह एक ओर जीवन कथाओं का और दूसरी ओर साक्ष्य समीक्षा के उपकरण का उपयोग करता था। अपने विवरण को सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत से संग्रहित कर तथा साक्ष्य समीक्षा के आधार पर उसकी यथातथ्यता को प्रतिष्ठित कर वह इतिहासकार के रूप में अपने दायित्व को संपन्न समझता था। वह सामान्यतया विवरण के विषय में अपने विचार अथवा उसके द्वारा प्रदत्त विवरण के विषय में अन्य लोगों के विचार नहीं देता था, और यह उसके व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं समझा जाता था। विवरण की वस्तु सामग्री के प्रति किसी प्रकार की समीक्षात्मक दृष्टि अथवा बुद्धि का प्रयोग इतिहासकार के अध्ययन क्षेत्र के बाहर समझा जाता था। अरबी इतिहास लेखन - पूरा कथाएं। अरबी भाषा में लिखी गई प्राचीनतम ऐतिहासिक कृतियों में अधिकांश अब्बासी शासनकाल से संबंध है। किंवदंतियों तथा पुराण कथाओं से उपलब्ध पूर्व इस्लामी युगों के विषय में प्राप्त विवरणों तथा पैगंबर मोहम्मद के नाम तथा जीवन से संबद्ध धार्मिक परंपराओं ने इतिहास लेखन को प्रारंभिक वस्तु सामग्री प्रदान की। पूर्व इस्लाम युग के विवेचन के प्रसंग में अल कुफा के हिसाम अल कलबी 819 ईस्वी का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल फिहरिस्त में उनके द्वारा लिखी गई 29 पुस्तकों की सूची प्राप्त होती है, लेकिन अब उनमें से केवल 3 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। लेकिन अल ताबरी, याकूत एवं अन्य इतिहास लेखकों की रचनाओं से भारी मात्रा में उसके उद्धरण प्राप्त होते हैं। धार्मिक परंपराओं पर आधारित प्रथम कृति सीरत रसूल अल्लाह है जिसका लेखक अल मदीना का मोहम्मद इब्न इसहाक था, जिसकी मृत्यु बगदाद में लगभग 767 ईस्वी में हुई। यह कृति पैगंबर मुहम्मद की जीवन कथा है। इस्लामी विजयों का इतिहास। इसके पश्चात वे कृतियाँ आती हैं जिसमें इस्लाम के प्रारंभिक युद्धों तथा विजयों की चर्चा हुई है। इस प्रसंग में मूसा इब्न उकवा 758 ईस्वी तथा अल बाकीदी 822 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय हैं। इब्न सादा, जिसकी मृत्यु बगदाद में 845 ईस्वी में हुई, नामक लेखक ने सर्वप्रथम वर्गीकृत जीवन कथाओं की एक महान कृति की रचना की, जिसमें मुहम्मद, उनके सहयोगियों तथा उसके अपने समय तक के उत्तराधिकारियों के जीवन के विषय में विवरण संकलित है। इस्लाम की विजयों के विषय में इतिहास लेखन करने वालों में दो सर्वाधिक विशिष्ट नाम मिस्र निवासी अब्दल हक्कम 870 से 71 ईस्वी तथा अरबी भाषा में लिखने वाले पर्सिया निवासी अहमद इब्न अहया 892 ईस्वी के हैं। प्रथम लेखक की कृति का नाम फुतूह मिस्र व अखबारूह है, जो मिस्र, उत्तरी अफ्रीका एवं स्पेन में इस्लाम की विजयों की चर्चा करने वाला प्राचीनतम प्राप्त प्रलेख है। अहमद इब्न हया की दो पुस्तकों के शीर्षक फुतूह अब बुलदन एवं अंसाब अल असराफ हैं। अंसाब अल असराफ में पहली बार विभिन्न नगरों की विजयों तथा विविध विधि संग्रहों को एक सुग्रथित तथा एक समष्टि के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके पूर्व की ऐतिहासिक रचनाओं में इस प्रकार की समष्टिगत विशेषता का सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। विशुद्ध इतिहास लेखन - फारसी दृष्टिकोण। इस प्रकार धीरे धीरे अब पुराण कथाओं, परंपराओं, जीवन कथाओं, वंशावलियों इत्यादि पर आधारित विशुद्ध इतिहास लेखन का समय आ गया था। इस प्रकार के इतिहास लेखन में प्रेरणा फारसी भाषा में लिखी खुदाए नामा, राजाओं का वृत्तांत जैसी पुस्तकों से ली गई। इसे इब्न अल मुकफ़ा 757 ईस्वी ने सीयर मुल्लुक अल अजम शीर्षक के अंतर्गत अरबी भाषा में अनुदित कर दिया था। इस्लाम को बहुत पहले ही यहूदी ईसाई चिंतना में एक विश्व इतिहास अवधारणा का उद्भव एवं विकास हो चुका था, जिसमें कि सभी पूर्ववर्ती घटनाओं को इस्लाम के इतिहास की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा सकता था। स्वरूप में ये इतिहास लेखन भी इस्लामी परम्परा को उसी पुरानी लकीर पर ही थे। प्रत्येक घटना को प्रत्यक्षदर्शियों एवं समसामयिकों के अभिकथनों एवं विवरणों से संबद्ध किया जाता था और उसके प्रारंभ करके मध्यवर्ती विवरणकारों के एक अनुक्रम में अंततः इसे लेखक तक लाया जाता था। इस कार्यविधि से जहां एक ओर घटनाओं के यथातथ निरूपण को बल प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर घटनाओं को मान तथा दिन के साथ ठीक ठीक तिथ्यांकित करने की भी प्रवृत्ति बढ़ी। लेकिन इस प्रकार के इतिहास लेखन में प्रदत्त तथ्य की यथार्थता एवं प्रामाणिकता इतिहासकार द्वारा स्वयं तथ्य के समीक्षात्मक परीक्षण पर न आधारित होकर विवरणकारों की इस श्रृंखला की अव्यवहित निरंतरता पर एवं प्रत्येक विवरणकारों की निष्पक्षता में विश्वास पर निर्भर करती थी। इतिहासकार अपने साक्ष्यों के चयन में तथा अपनी वस्तु सामग्री को व्यवस्थित करने में स्वतंत्र होता था तथा इनके कार्यों में अपने समीक्षापूर्ण विवेक का उपयोग करता था, किंतु समान रूपेण उसमें विश्लेषण शक्ति, आलोचना, तुलनात्मक अध्ययन अथवा अनुमान का सर्वथा अभाव था। प्रारंभिक औपचारिक इतिहास लेखकों में प्रथम नाम इब्न कुतयब, मृत्यु 1889 का आता है, जिसने किताब अल मारिफ, ज्ञान की पुस्तक नामक इतिहास पुस्तक लिखी। इसी का समसामयिक अबू हनीफ अहमद इब्न दाऊद अल दिनावरी था 895 ईस्वी, जिसकी प्रमुख रचना का शीर्षक अल अखबार अल तिवाल लंबे वृत्तांत है। यह फारसी दृष्टिकोण से लिखा गया एक सार्वभौमिक इतिहास प्रस्तुत करता है। लगभग इसी समय इब्न बादी अल यकूबी द्वारा एक अन्य सार्वभौमिक इतिहास ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें हिजरी सन 258 से लेकर 872 ईस्वी तक का इतिहास दिया गया है एवं जिसमें प्राचीन एवं अभिकृत शिया परंपरा सुरक्षित है। हमजा अल इस्फानी मृत्यु 961 ईस्वी तथा मिसकबाय 1030 ईस्वी इस वर्ग के दो अन्य उल्लेखनीय इतिहासकार हैं। मिसकबाय तजारीब अल उमम शीर्षक के अंतर्गत हिजरी 369 ईस्वी सन 979 से 80 तक का सार्वभौमिक इतिहास लिखा है और इसके नाम की गणना प्रमुख अरबी इतिहासकारों में की जाती है, किंतु अरब इतिहासकारों में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम अबू जाफर मोहम्मद इब्न जरीर अल तबरी तथा अबू अल हसन अली अल मसूदी के हैं। तबरी का जन्म फारस के पहाड़ी जिले तबरिस्तान में हुआ था 838 से 922 ईस्वी। उसकी प्रमुख कृति तारिक अल रसूल ब अल मुल्लुक पैगंबरों तथा राजाओं का इतिहास है, जिसमें तथा यथा तथ्य तथा विस्तारपूर्ण इतिहास लेखन का प्रयास किया गया है। उसने कुरान की टीका भी लिखी, जिसे बाद के टीकाकारों एवं व्याख्याकारों द्वारा एक प्रतिमान तथा आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार सार्वभौमिक इतिहास से संबद्ध उसकी तारीख भी मिसकवाय इब्न अल अतहीर तथा अबू अल फिदा जैसे प्रमुख इतिहासकारों द्वारा आधार ग्रंथ के रूप में मान्य हुआ। अधिकांश अरब इतिहासकारों के समान तबरी ने भी अपनी घटनाओं को तिथि क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया है एवं उन्हें हिजरी संवत के अनुवर्ती वर्षों में रखता गया है। वस्तुतः उसका इतिहास सृष्टि रचना के दिन से प्रारंभ होता है तथा हिब्री 302 905 ईस्वी तक चलता है। उसकी मूल पुस्तक का विस्तार प्राप्त संस्करण से 10 गुना अधिक बड़ा माना जाता है। वृत्तांत को प्रस्तुत करने की उसकी विधा धार्मिक परंपराओं इस्नाद के समान है। अपने समय की साहित्यिक कृतियों के उपयोग के साथ ही साथ तबरी ने अपनी यात्राओं के प्रसंग में उपलब्ध उन मौखिक परंपराओं का भी अपने इतिहास लेखन में भरपूर प्रयोग किया है, जो उसे बगदाद तथा अन्य विद्या केंद्रों में शेखों से प्राप्त हुई थी। उसने फारस, इराक, सीरिया, मिस्र आदि देशों की यात्रा की थी एवं उसके उत्साह तथा अध्यवसाय की उपकल्पना उसके विषय में प्राप्त इस लोकप्रिय परंपरा से की जा सकती है कि वह प्रतिदिन 40 पृष्ठ लिखा करता था। मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने अरब इतिहास लेखन में एक नई विधा का अनुप्रवेश किया। अपनी घटनाओं के विवरण वर्षों को केंद्र बनाकर देने के स्थान पर उसने शासन वंशों, राजाओं तथा लोगों के घटना विवरणों का केंद्र बिंदु बनाया। यह एक नवीन विधा थी जिसका परवर्ती काल में इब्न खालदून तथा अन्य इतिहासकारों द्वारा अनुकरण किया गया। इतिहास लेखन में ऐतिहासिक दृष्टांतों का सम्यक उपयोग भी उसी से प्रारंभ हुआ। वह भी ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य से यात्रा पर निकला और अपने मूल स्थान बगदाद से जंजीवार तक गया। उसके जीवन के अंतिम दशक सीरिया एवं मिस्र में व्यतीत हुए, जहां उसने 30 जिल्दों में विस्तृत अपनी प्रमुख रचना जो अब मरूज अल धहाब व मदीन अल जवाहर सोने के चारागाह तथा जवाहरों की खान शीर्षक के अंतर्गत सार रूप में मिलती है की वस्तु सामग्री का संकलन कार्य किया। उसकी उदारता तथा वैज्ञानिक जिज्ञासा ने उसे मुस्लिमेतर विषयों के अतिरिक्त भारतीय, पारसिक, रोम तथा यहूदी इतिहास की ओर भी आकृष्ट किया है। अपनी पुस्तक के प्रारंभ में ही वह कहता है कि जहां आजकल सूखा है वहां पहले समुद्र था, और जहां आजकल समुद्र है वह सूखा स्थल था, और इसके लिए भौतिक शक्तियाँ उत्तरदायी थीं। उसकी मृत्यु 956 ईस्वी में हुई। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने उसके अल तनवीह व अल इसराफ नामक ग्रंथ में अपने इतिहास, दर्शन तथा प्राकृतिक जगत के विषय में अपने विचारों को एक लिखित रूप प्रदान किया। अरबी इतिहास लेखन का उत्कर्ष। तबरी तथा मसूदी की रचनाओं में अरबी इतिहास लेखन ने अपनी उत्कृष्टता के चरम बिंदु को प्राप्त किया तथा मिस्कवाय 1030 ईस्वी के पश्चात इसका शीघ्रता के साथ पतन प्रारंभ हुआ। अल अतहीर 1160 से लेकर 1234 ईस्वी ने अपनी पुस्तक अल कामिल फी अल तारीख इतिवृत्तों की पूर्ण पुस्तक में अल तबरी की कृति का संक्षेप किया तथा वृत्तांत को 1231 ईस्वी तक आगे बढ़ाया। इसमें क्रसेड के युग का इतिहास, उसका मौलिक योगदान, उसकी प्रमुख पुस्तक उसद अल गावा झाड़ी के शेर है, जिसमें सहयोगियों की 7500 जीवन कथाओं का संकलन है। सिब्बत इब्न अल जाबजी 1186 से 1257 ईस्वी ने सृष्टि रचना के दिन से 1256 ईस्वी तक का सार्वभौमिक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका शीर्षक मीरत अल जमा की तारीख अल अयाम है। इस प्रसंग में इब्न खालदून की चर्चा आवश्यक है। इब्न खालदून का जन्म 1322 ईस्वी में ट्यूनिस में हुआ था। उसके जीवन काल में 15वीं शताब्दी के प्रथम दशक का अधिकांश भाग सन्निविष्ट था। उसने पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका का तथा कुछ अंशों तक मुस्लिम अधिकृत स्पेन एवं मिस्र की तत्कालीन राजनीतिक कार्यविधियों में जमकर भाग लिया। वह इन प्रदेशों के समसामयिक इतिहास से भली भांति परिचित था तथा उसे इस्लाम के प्रभुत्व के अंतर्गत स्थित अन्य देशों की राजनीति का भी ज्ञान था। इन घटनाओं का उसके विचारों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। पूर्ववर्ती 4 शताब्दियों की तुलना में इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप इस्लामी समाज का स्वरूप तेजी से बदल रहा था और इब्न खालदून ने परिवर्तन प्रक्रिया व इन घटनाओं के स्वरूप तथा महत्व को समझा। भावी इतिहासकारों के लाभ के लिए इन परिस्थितियों का लेखन अपेक्षित था, ताकि वे इनसे प्रकाशित होने वाले इतिहास के स्वरूप को ठीक से समझ सकें एवं बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारिक कर्म में इनकी सहायता ली जा सके। इब्न खालदून ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान तथा इस्लामी परंपराओं के साथ साथ धार्मिक विधि संग्रह एवं रहस्यवाद के विशिष्ट तत्वों का भी अध्ययन किया था। अपनी उच्च शिक्षा के अंतर्गत उसने तर्कशास्त्र, गणित, प्राकृतिक दर्शन एवं अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन किया। इन विज्ञानों के अध्ययन के लिए सहायक उपादान के रूप में उसने प्रासंगिक भाषा शास्त्रीय जीवन कथा विषय तथा ऐतिहासिक विज्ञानों का भी ज्ञान प्राप्त किया और अंत में प्रशासन के व्यावहारिक कार्य व्यापारों में रुचि रखने के कारण उसने राजकीय सेवा के अंतर्गत भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रारंभ से इस्लामिक धार्मिक चिंतना का केंद्र बिंदु समाज तथा उसकी सम्यक व्यवस्था का प्रश्न था। कुरान तथा हदीत के रहते हुए समस्या यह थी कि उनमें निहित सिद्धांतों तथा शिक्षाओं को कैसे इस्लाम के प्रसार तथा विकास से उत्पन्न नई तथा परिवर्तित ऐतिहासिक परिस्थितियों में व्यवहार में लाया जाए। इब्न खालदून की इतिहास दृष्टि। इब्न खालदून की प्रमुख कृति किताब अल इबर अथवा इतिहास है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि वह अपनी पुस्तक के शीर्षक के लिए इतिहास के लिए सामान्यतया प्रयुक्त शब्द तारीख के स्थान पर इबर का चयन करता है। इबर शब्द अधिक व्यापक है तथा इसके विविध आयाम हैं। अपनी पुस्तक में वह सार्वभौमिक इतिहास को संपूर्ण परिधि को सन्निविष्ट करना चाहता था, किंतु विशेष रूपेण वह उस इतिहास का विवरण प्रदान करना चाहता था जिसका उसने स्वयं अनुभव किया था, अर्थात सामान्यतया इस्लामी विश्व का एवं विशेष रूपेण इस्लामी प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्र का पतन। किंतु यदि उसका प्रयोजन मात्र इतना होता तो उसकी कृति के लिए तारीख शब्द अधिक प्रयुक्त होता। किंतु उसका प्रमुख प्रयोजन केवल इतिहास लिखना नहीं था, अपितु इसके परे भी जाना था। वह इतिहास से सीखना चाहता था और इस कारण ऐतिहासिक घटनाओं के स्वरूप तथा कारणों का सम्यक विश्लेषण, तुलना द्वारा उनमें निहित रहस्यों का समझना उसका प्रमुख प्रयोजन था। इतिहास अध्ययन को इस रूप में लेने पर वह घटनाएं उसके शोध की प्रमुख लक्ष्य नहीं थी, वे केवल वह वस्तु सामग्री प्रदान करती थी जिनसे उनके पीछे स्थित नियमों को व्युत्पन्न करना था। वे नियम उन घटनाओं के स्वरूप तथा कारणों को प्रदर्शित करते हुए उनकी व्याख्या प्रदान करते हैं। इस प्रकार इब्न खालदून द्वारा इबर शब्द का प्रयोग विवेक अर्थात नज़र तथा बोध अर्थात फह के पर्याय के रूप में हुआ है। इस प्रकार इब्न खालदून ने इतिहास का अध्ययन एक दार्शनिक प्रयोजन के लिए किया है। इस दृष्टिकोण से इतिहास का अध्ययन एवं लेखन किसी अन्य मुस्लिम इतिहासकार ने नहीं किया था। उसने पहली बार संस्कृति के विज्ञान की आवश्यकता को समझा तथा इसके लिए प्रयास किया। उसके अनुसार इतिहास वस्तुतः मानव समाज के विषय में सूचना है जो कि अपने विविध पक्षों में विश्व की संस्कृति है। आगे वह कहता है कि ऐतिहासिक विवरणों में भूलें अपरिहार्य रूपेण अंतर्भूत होती हैं और इसके लिए उसने कई कारण गिनाए हैं। उसने हदीथ तथा इतिहास में विभेद करते हुए कहा है कि हदीथ का संबंध विध्यात्मक आदेशों से है जबकि इतिहास का संबंध वास्तविक घटनाओं से होता है। ऐतिहासिक विवरण आदेश नहीं होते अपितु घटनाओं के सकारात्मक अथवा नकारात्मक वक्तव्य होते हैं। ये वक्तव्य स्वयं में सत्य अथवा मिथ्या होते हैं, यही उनकी व्याकरणीय तथा तार्किक परिभाषा है। इन वक्तव्यों की आलोचना इस प्रश्न से प्रारंभ होनी चाहिए कि क्या इस प्रकार की घटना घट सकती थी। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार स्वयं घटना की असंभाविता प्रतिष्ठित हो जाने पर उस प्रमाण की परीक्षा ही आवश्यक नहीं रह जाती जिससे इसका विवरण प्राप्त होता है। इतिहास दो सहायक शास्त्रों की अपेक्षा रखता है, संस्कृति का शास्त्र अथवा विज्ञान जो ऐतिहासिक घटनाओं की स्वरूप चर्चा से संबद्ध होता है तथा प्रमाण समीक्षा जो इस प्रकार की घटनाओं की सूचना देने वाले प्रमाणों की क्षमता ज्ञान तथा प्रयोजनों से संबद्ध होता है। संस्कृति का शास्त्र अथवा विज्ञान इतिहास का एक प्रमुख उपादान है किंतु अंततः वह इतिहास का एक उपादान ही होता है। इतिहास के विषय में यह उसका निष्कर्ष है। इतिहास के सम्यक अवबोध के लिए संस्कृति का विज्ञान आवश्यक है। उसने प्रतिनिधि दृष्टांतों की परीक्षा के उपरांत यह दिखाया है कि उसके पूर्व किसी भी इतिहासकार ने इनका प्रयोग नहीं किया। उसके अनुसार संस्कृति कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है अपितु एक अन्य तत्व जो कि मनुष्य है का धर्म है। अतएव संस्कृति का स्वरूप सहज स्वरूप मनुष्य के स्वभाव अर्थात वह तत्व विशेषण है जो उसे शेष प्राणियों से पृथक करता है, से संबंध होगा। बुद्धि के कारण वह अन्य प्राणियों से विशिष्ट है। बुद्धि के कार्य व्यापार के दो आयाम हैं, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक। बुद्धि का व्यावहारिक पक्ष पहले उद्भूत होता है तथा मनुष्य के सभी कार्य व्यापारों जिनसे की संस्कृति बनती है का स्रोत होता है। आगे वह संस्कृति के विविध प्रकारों स्वरूपों तथा पक्षों पर विस्तार से विचार करता है। इतिहास वास्तविक अस्तित्व के स्वरूप तथा कारणों से संबद्ध होता है। कारणों के सामान्य स्वरूप में उसकी रुचि नहीं होती। संस्कृति का विज्ञान जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट होगा एक विज्ञान के रूप में वास्तविक ऐतिहासिक अस्तित्व से संबद्ध न होकर यथार्थ तथा संभावित अस्तित्व से संबद्ध होता है तथा इसका लक्ष्य विशिष्ट घटनाओं का ज्ञान न होकर उनमें तथा उनके सदृश घटनाओं में निहित सिद्धांतों का ज्ञान होता है। ये ऐतिहासिक घटनाओं के एक वर्ग का अध्ययन करता है जिसका प्रयोजन होता है उनके विषय में सार्वभौमिक नियम ढूंढना तथा बनाना, और चूंकि आकस्मिक तथा यादृच्छिक घटनाओं के विषय में इस प्रकार के सार्वभौमिक नियम नहीं बनाए जा सकते अतः संस्कृति का विज्ञान ऐसी घटनाओं में रुचि नहीं रखता। संस्कृति के विज्ञान की वस्तु सामग्री इतिहास से निर्गमित होती है। ज्ञान के क्रम में यह इतिहास के बाद आता है तथा इसका प्रमुख कार्य ऐतिहासिक विवरणों के शोधन में सहायता करना है। इतिहास की कला का अंतिम लक्ष्य व्यवहारिक कार्य व्यापार अथवा करणीय वस्तुओं का परिष्कार है और इस प्रकार संस्कृति के विज्ञान का भी अंतिम लक्ष्य व्यवहारिक कार्य व्यापार भी है। यह स्पष्ट है कि यदि संस्कृति के विज्ञान को इतिहास की कला के एक उपयुक्त उपादान के रूप में कार्य करना है तो इसे ऐतिहासिक घटनाओं के स्वरूप तथा कारणों एवं उनके परिवर्तन में निहित सिद्धांतों के ठीक ज्ञान को प्राप्त करना होगा एवं इन्हें विशुद्ध रूपेण समझने के लिए आवश्यक है कि मानव स्वभाव को एक स्वतंत्र सैद्धांतिक गवेषणा का विषय बनाया जाए। उनका विचार है कि मनुष्य तथा उसके कर्मों के नश्वर होने पर भी इनसे संबद्ध विज्ञान का एक विशेष रूप में लाभ हो सकता है। निष्कर्ष: इस्लामी चिंतन में इतिहास के स्वरूप उद्देश्य तथा कार्य विधि के सम्यक विचार का प्रारंभ कुरान से माना जा सकता है। ये विचार स्वयं कुरान में प्रकट हुए हैं। इस्लामी चिंतन का प्रमुख विषय ईश्वर का मानव इतिहास से संबंध है। मुस्लिम समाज से यह आग्रह किया गया है कि पार्थिव जगत की घटनाओं को ईश्वरीय निर्णय के प्रकाश में देखने की चेष्टा करें। कुरान तथा हदीथ में इतिहास संबंधी इस दृष्टिकोण के कारण इस्लाम की प्रारंभिक पीढ़ियों में अतीत के अध्ययन के प्रति अधिक अनुराग दिखाई देता है। इस्लाम में इतिहास लेखन का प्रारंभ विशिष्ट घटनाओं के विषय में प्रामाणिक विवरणों की खोज, उनके संग्रह तथा संप्रेषण के रूप में दिखाई देता है। विवरण की वस्तु सामग्री के प्रति किसी प्रकार की समीक्षात्मक दृष्टि के प्रयोग की अपेक्षा नहीं की जाती थी। इस्लामी इतिहास की प्राचीनतम कृतियां अरबी भाषा में अब्बासी शासन काल में लिखी गई, जो तीन प्रकार की हैं। इस संदर्भ में पहले हिसाम अल कलबी इब्न इसहाक, मुसा इब्न उकवा तथा अल वाकिदी की कृतियों का उल्लेख किया जा सकता है, जो मूलतः पौराणिक किंवदंतियों पर आधारित रचनाएं हैं। अरबी इतिहास लेखन में दूसरे प्रकार की वे रचनाएं हैं जिनमें इस्लाम की विजय का इतिहास प्रत्यक्ष होता है। ऐसी रचनाओं के लेखकों में हब्दल हक्कम तथा अहमद इब्न अहया का नाम सर्वोपरि है। तीसरे प्रकार की रचनाएं फारसी में लिखी गई तथा उनका संबंध विशुद्ध इतिहास लेखन से है। इस प्रक्रिया का प्रारंभ इब्न अल मुखफा की रचनाओं में से होता है, जिसमें प्रत्येक घटना को प्रत्यक्षदर्शियों तथा समसामयिक अभिकथनों एवं अनेक प्रकार के विवरणों से संबद्ध किया जाता था। इसके बाद फारसी दृष्टि से सार्वभौमिक इतिहास लेखन का प्रारंभ अबू हनीफ अहमद ने किया तथा तथ्यपरक विस्तार से इतिहास लेखन का प्रयास करने वालों में अबू जाफर, मोहम्मद इब्न जरीर अल तबरी तथा अबू अल हसन अली अल मसूदी के प्रयासों की प्रशंसा की गई है। अल मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। उसने अपने इतिहास लेखन में वर्षों के स्थान पर शासन वंशों, राजाओं तथा लोगों को घटना का विवरण का केंद्र बिंदु बनाया। तबरी तथा मसूदी की रचनाओं में अरबी इतिहास लेखन अपनी उत्कृष्टता के चरम बिंदु पर पहुंचा। 14वीं सदी के चौथे दशक में इब्न खालदून ने इतिहास लेखन को एक नई दृष्टि प्रदान की। उसने इतिहास का अध्ययन दार्शनिक प्रयोजन के लिए किया। उसने इतिहास जगत में पहली बार संस्कृति के विज्ञान की आवश्यकता को समझा तथा उसके लिए तदनुरूप प्रयास किया। उसके अनुसार इतिहास वस्तुतः मानव समाज के विषयों में सूचना है जो विश्व संस्कृति पर आधारित है। इसीलिए अपने इतिहास में वह संस्कृति के विविध प्रकारों, स्वरूपों तथा पक्षों पर विस्तार से विचार करता है। समाप्त।